अब वर्स 27 पे चलते हैं. सेल्फ रियलाइज शरीर कभी नहीं होता, न मन होता न बुद्धि होती. ओके सिर्फ रियलाइजेशन होती है, दैट इज इट. रियलाइजेशन क्या होती है कि ये शरीर मन बुद्धि है ही नहीं, दे डोंट एग्जिस्ट. जैसे कि तुम रात को सपना देखते हो, तुम्हें सपने में सब कुछ नजर आता है, सुबह उठते हो तो क्या रियलाइज होता है कि कुछ था ही नहीं. क्या तुम बोलोगे कि वो जो ड्रीम में जो था वो रियलाइज हो गया? तुम ऐसा बोल सकते हो कि वो जो ड्रीम में कैरेक्टर था वो रियलाइज हो गया? नहीं. रियलाइजेशन क्या है कि वो पूरा ड्रीम ही था, वो कुछ सब झूठ था, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम. आत्मन जो है, आत्मन बिना इस सब के भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आत्मन का ही एक रूप है जिसने शरीर मन बुद्धि जो जीव रूप में भी आ रहा है, जहां से उसे जाना जा सकता है. जानना है अगर उसको तो शरीर मन बुद्धि चाहिए, लेकिन सिर्फ अगर आत्मन होना है तो कोई जरूरत नहीं है. अब ये ना बड़ा वेदांत में एग्जाम्पल बहुत यूज किया जाता है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, सांप और रस्सी का. कि जैसे आप अंधेरे में हो, रात में आप उठे, बाहर निकले, अंधेरा है और वहां पे एक रस्सी पड़ी है और हल्की सी, बहुत ही हल्की रोशनी है, तो आपको ऐसा भ्रम हो सकता है कि वो सांप है ना, ऐसा लग सकता है कि वो सांप है और आप डर भी सकते हो उस सांप को देख के. कभी कभी किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है कि अरे ये तो सांप है. लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि वो सांप नहीं है? कैसे पता लगेगा? जब हम वहां पर उजाला करेंगे लाइट में, है ना, लाइट लगाएंगे तो हमें पता लगेगा अरे सांप नहीं है, ये तो रस्सी पड़ी हुई थी, और सारा डर समाप्त हो जाएगा. तो यही एग्जाम्पल दिया जाता है यहाँ पे कि जिस संसार को तुम देख रहे हो, इस शरीर मन बुद्धि को जो तुम मैं मान रहे हो, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुमने क्या को क्या मान लिया है. कैसे इसको मैं मान लिया है? अंधकार में. किसके अंधकार में? अज्ञान के अंधकार में तुम इसको मैं मान के बैठ गए हो. और जब उजाला होगा तब तुम जान पाओगे कि अरे ये तो है ही नहीं. पर वो उजाला किस चीज़ का होगा? ज्ञान का उजाला. तो ये बहुत बहुत कॉमन, मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स कोटेड इन द वेदांत. द आई रिफ्लेक्टेड इन द इंटेलेक्ट इज नॉट द सेल्फ, द रिफ्लेक्शन इज नॉट द विटनेस. देखो एक और चीज जाननी है, जो रिफ्लेक्शन है वो साक्षी नहीं है. दैट ऑफ विच इट इज अ रिफ्लेक्शन, दैट ओरिजिनल एंटिटी इज द विटनेस. सिर्फ जो ओरिजिनल एंटिटी है, जो सेल्फ है, जो यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है और उसकी ओरिजिनल एंटिटी वो है साक्षी. बाय मिस्टेकिंग द ईगो एज योर रियल सेल्फ. देखो फिर वही आ गया, जैसे हम बोल रहे हैं हमने रस्सी को सांप समझ लिया, तो हमने ईगो को, ये जो मैं अहम है, इसको मैंने क्या बोल दिया है? इसको मैंने रियल सेल्फ मान लिया है. और इसकी वजह से इतने सारे डर, और आई एम फियरफुल ऑफ डेथ, आई एम फियरफुल ऑफ हाइट्स, आई एम फियरफुल ऑफ दैट, फियरफुल ऑफ दिस. दिस ईगो इज एन इल्यूजन, एंड व्हेन वन रियलाइजेस द ट्रुथ, ऑल फियर्स डिसअपीयर, वन बिकम्स फियरलेस. दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंस. और सबसे पहले तो आपका मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, और सारे जो डर होते हैं वो मृत्यु के डर से ही कनेक्टेड होते हैं. क्यों? क्योंकि आपको ये रियलाइज होता है कि ये जो ईगो है, अगर आप देखो फिर से स्वप्न के एग्जाम्पल में, स्वप्न में देखा जाए तो मृत्यु हो गई ना आपकी. अगर वो एक ड्रीम चल रहा था वहाँ पे, वो खत्म हुआ तो आपकी मृत्यु ही तो हुई वहाँ पे. पर आप क्या रोते हो कि अरे मेरी मृत्यु हो गई, वो कहाँ गए सारे लोग, उनका क्या हो रहा होगा वहाँ पे, वो लोग रो रहे होंगे मेरे लिए? कभी सोचते हो ऐसा? आज तक सोचा है कभी उठने के बाद? तो बिल्कुल ऐसे ही ये भी, आपका वो डर खत्म हो जाता है, आप रियलाइज करते हो देर इज नो डेथ, देर इज ओनली चेंज, दैट्स इट. वर्स 28, जस्ट एज अ लैम्प इल्यूमिनेट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन इट्स विसिनिटी, लाइट ऑफ द रियल सेल्फ इल्यूमिनेट्स द इंटेलेक्ट, सेंसेस, माइंड एटसेट्रा. है ना, जैसे एक बल्ब पूरे कमरे में हर चीज को रोशन करता है. अगर अंधेरा हो हम एक बल्ब जला दें, सारी चीजें रोशन होती हैं. ऐसे ही आत्मन से आपका शरीर मन बुद्धि हर चीज उसी से रोशन हो रही है. फिर यहाँ पे गुरु माने के एग्जाम्पल वो बताया है कि बचपन में उन्होंने किसी की डेथ देखी होगी जब वो छोटी थी, कि एक पड़ोस में कोई होंगे जिनकी डेथ हो गई होगी, मृत्यु थी, तो उनकी बेटी बहुत परेशान थी और वो उनकी जो डेड बॉडी है उसको बार बार जगाने की कोशिश कर रही थी कि आप बोलते क्यों नहीं हो. तो यहाँ पे मुझे ना एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगी. देखिए ये इंग्लिश वाली बुक में 110 पेज का जो टॉप पैराग्राफ है ना, उसमें है, हाउ कुड ही वेक अप व्हेन द सटल बॉडी एंड प्राण हैड लेफ्ट हिज ग्रॉस बॉडी. देखो उन्होंने ये नहीं बोला कि आत्मा निकल गई शरीर से, आत्मा का इस्तेमाल नहीं किया जो हम जनरली करते हैं. हम बोलते हैं ना कि आत्मा नहीं रहा, आत्मा चली गई. नहीं, उन्होंने क्या बोला है, सटल बॉडी. सटल बॉडी क्या है, आपकी एस्ट्रल बॉडी है ना, आपका सूक्ष्म शरीर. और प्राण ने क्या किया है, भौतिक शरीर को छोड़ दिया है, बस इतना ही हुआ है. दैट इज इट. डेथ में इतना ही होता है और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ भौतिक शरीर हट गया है और कुछ भी नहीं हुआ. और वही शंकराचार्य, देखो बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है सब में. बॉडी इज इनर्ट, माइंड इज इनर्ट, इंटेलेक्ट इज इनर्ट. इट इज द लाइट ऑफ द सेल्फ दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द इनर्ट. मतलब शरीर मन बुद्धि अपने आप में जड़ है. क्या है चैतन्य, क्या है, सिर्फ आत्मन चैतन्य है, जिसकी वजह से ये तीनों को भी रोशनी मिल रही है. और हम क्या हैं, हम लोग क्या हैं, हम मिक्स हैं उनका, दोनों का. अगर हम देखें तो आप के आप ये जीव हो और साथ में जो आत्मन के उससे चल रहा है. लेकिन प्रॉब्लम क्यों हुई है, प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आप उस आत्मन को भूल गए हो और वो जो नजर न कौन आता है, शरीर मन और बुद्धि, और उसको मैं मान के बैठ गए हो. बस ये गलती हुई है. वर्स 29 पे चलते हैं. शंकराचार्य सेज समथिंग वेरी अमेजिंग हियर. ही सेज नो नॉलेज इज नीडेड टू नो द सेल्फ. देखो ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है. वो कह रहे हैं किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है खुद को जानने के लिए. अब हम बोलेंगे हम तो यहाँ पे ज्ञान मार्ग का पढ़ रहे हैं, हम तो यहाँ पे वेदांत पढ़ रहे हैं, हम तो ज्ञान ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि खुद को जानने के लिए ज्ञान की जरूरत ही नहीं है. अभी तो बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया. नहीं तो वो क्या कहते हैं, जैसे एक दिए को अगर एक जला हुआ दिया है, उसको रोशनी दिखाने के लिए क्या एक और दिए की जरूरत पड़ेगी, नहीं ना, वो तो खुद ही जल रहा है. क्या सूरज को रोशनी दिखाने की के लिए एक और सूरज की जरूरत पड़ेगी, नहीं, वो तो खुद ही प्रकाशमान है. ऐसे ही जो सेल्फ है, जो आत्मन है, वो अपने आप में ही पूरा चैतन्य है, अपने आप में ही प्रकाशित है, उसी के ही प्रकाश से सब कुछ हो रहा है. तो वो तो खुद को ही जानता है, इट नोज इट सेल्फ, इजंट इट. उसको जरूरत नहीं है, उसको हमें किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है. क्यों, देखो ज्ञान मार्ग पर ज्ञान नहीं दिया जाता, ज्ञान मार्ग पर अज्ञान का नाश किया जाता है. ओके तो जैसे हमने बहुत कॉमन एक एग्जांपल है, आप लोग को पता है अगर कोई कांटा आपके अंदर घुस जाता है तो आपको एक और कांटा लगता है उस कांटे को निकालने के लिए, है ना, हम सब ये जानते हैं ना. एक और कांटे से उस कांटे को निकालते हैं और फिर दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है. बिल्कुल ऐसे ही क्या हुआ है, अज्ञान क्या है आपका, यहाँ पे आपका अज्ञान ये है कि आपने बहुत सारी मान्यताएं अपने अंदर भर ली हैं, जो आप लोगों को बताया गया, चाहे वो स्क्रिप्चर से, चाहे वो सोसाइटी से, बहुत कुछ भर लिया है अपने आप को, पता नहीं क्या मान के बैठ गए हो. तो आपने अपने अंदर अज्ञान भर लिया है. तो ज्ञान क्या है यहाँ पे, गुरु क्यों चाहिए, वो उस अज्ञान को हटा रहा है, वो आपके एक एक अज्ञान को हटाता जा रहा है, इसलिए चाहिए. और बस जैसे ही अज्ञान हटा, और तब क्या होगा, सब अज्ञान हटेगा तो तुम तो वो हो ही ऑलरेडी, है ना. सिर्फ तुम्हारे ऊपर, हम ये बोल सकते हैं कि अगर तुमने एक लाल रंग का चश्मा लगाया हुआ है अपनी आंखों के ऊपर और तुम बोल रहे हो मुझे पूरा संसार ना लाल नजर आ रहा है ना, तो गुरु क्या करेगा, बस वो चश्मा हटा देगा. उस कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ चश्मा हटाना है, वो उसका काम है. उसके बाद तुम्हें नजर आएगा कि साफ वो है ही, है ना. और एक बार ज्ञान हो गया तो हाँ बिल्कुल कोई गुरु की जरूरत नहीं है.
जैसे पत्थर पत्थर होता है, वैसे तो पत्थर ही है, लेकिन अगर कोई मूर्ति के हाथ में आ जाए तो वो उसको उसमें एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल करके उसमें से मूर्ति बना देता है. मूर्ति तो ऑलरेडी उस पत्थर में थी लेकिन हमें नजर नहीं आ रही, उसमें उसको तराश के एक्स्ट्रा पोर्शन हटा के मूर्ति बनाई, वैसा ही है उनका काम.
एग्जैक्टली. तो वर्स 29 में इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म का, कि जैसे यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, आत्मन की, है ना, कि आत्मन ही सब कुछ है, सेल्फ है, एवरीथिंग इज सेल्फ. और वो कहते हैं कि जो बुद्धिज्म है वो क्या किस पे बोलता है, शून्यता पे, नथिंगनेस, कि कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, बुद्ध ने ये बोला है. तो गुरु माँ यहाँ पे ये बोल रही हैं, लेकिन बट द वन हु नोज द नथिंगनेस दैट एंटिटी स्टिल एग्जिस्ट. अगर देखा जाए कौन जानता है कि शून्यता है ना, कोई तो जानने वाला है ना, तो वो एंटिटी है. तो वो कह रही है बुद्धिज्म खत्म होता है वहां वेदांत शुरू होता है. यहाँ पे वो ये बता रही है बुद्धिज्म और वेदांत आर सपोज टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर. ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी माने जाते हैं. एक्चुअली देखा जाए तो दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, नथिंगनेस और इवन नथिंग एंड एवरीथिंग बोथ आर द सेम, बिकॉज वंस यू रियलाइज दैट इट इज द सेम थिंग, कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे. वो कहती हैं इन इंडिया इवन अ हॉकर विल से दैट द आत्मन इज इटर्नल. यहाँ पे तो हर कोई बोलता है ना आत्मा अमर है. हॉकर मतलब कोई भी, किसी को पता है या नहीं पता है, बच्चा बच्चा, बूढ़ा, कोई भी रिक्शा वाला, कोई भी बोल देगा. लेकिन क्या वो जानते हैं कि कैसे आत्मन जो है वो इटर्नल है? कोई भी नहीं जानता. जैसे कि वो कहती हैं अगर आपको कोई पूछे कि आईफिल टावर कहाँ पे है तो सब बता देंगे कि हाँ पेरिस में है. लेकिन क्या जरूरी है कि आप पेरिस गए हो और आपने आईफिल टावर देखा हो? नहीं, आपने सुना होगा या आपने फोटो देखी होगी, है ना, आपको दूसरों से सुना है कि वो लोगों ने आईफिल टावर देखा है या आपने बुक्स में पढ़ा है कि आईफिल टावर है. ऐसे ही वो कह रही है जैसे केदारनाथ में बहुत सुंदर मंदिर है, पर क्या तुमने सच में खुद से देखा है या सिर्फ जानकारी है उसके बारे में? तो जो तुमने खुद देखा नहीं हो उसको क्या बोलते हैं हम? परोक्ष ज्ञान. ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. परोक्ष ज्ञान मतलब इनडायरेक्ट नॉलेज, या जिसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, किसी दूसरे से आपने जाना है, आपको खुद का नहीं पता है. फिर उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जैसे तुमने कभी हेवन या हेल, तुमने स्वर्ग या नर्क नहीं देखे होंगे, लेकिन तुम उनके बारे में मानते हो, तुम उनको बिलीव करते हो उनकी एग्जिस्टेंस में. फिर वो कह रही हैं कि जैसे आपने जो भी चीज़ देखी है, जैसे उस समय ये जो चल रहा था सत्संग, ये ऋषिकेश में हो रहा था, तो कह रहे हैं कि अगर तुम लोग सब ऋषिकेश आए हुए हो, तुम आईफिल टावर नहीं गए हो, तुम केदारनाथ का तुमने मंदिर नहीं देखा है, लेकिन तुम ऋषिकेश में आए, तो वो है डायरेक्ट नॉलेज. तो वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष ज्ञान. ये डिफरेंस समझे, ये सिर्फ टर्म्स हैं लेकिन ये बड़ी काम आती हैं. परोक्ष ज्ञान मतलब इनडायरेक्ट नॉलेज, और प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब डायरेक्ट नॉलेज, है ना, कि तुम ऋषिकेश में हो. और फिर आता है अपरोक्ष ज्ञान. अपरोक्ष ज्ञान क्या है? आपको पता है ना कि आपका माइंड है, आपको बाहर से कहीं जाना नहीं पड़ा, आपका अपना अनुभव है अपने मन का, है कि नहीं? हमें पता है कि मन है. यू हैव नेवर सीन अ माइंड बट यू नो, मतलब सीन इन द सेंस आपने उसको देखा तो नहीं है लेकिन आपको पता है आपका माइंड है. इसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान. और सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है? द हाइएस्ट लेवल ऑफ नोइंग इज द सेल्फ नोइंग द सेल्फ. मतलब वो जो सेल्फ खुद से खुद को जानता है वो क्या होता है? साक्षात अपरोक्ष ज्ञान. ये चार टर्म्स हैं यहाँ पे, परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान और साक्षात अपरोक्ष ज्ञान. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आत्मबोध की, आत्मन की, वो कैसे होगा? जब साक्षात अपरोक्ष ज्ञान होगा. अब वो यहाँ पे कह रही हैं कि जैसे कहीं पे भी, ऋषिकेश में वो एक एग्जाम्पल दे रही हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे आपको वेदांत सिखाया जाता है, जहाँ पे आपको सारी किताबें पढ़ा दी जाएंगी, ग्रंथ पढ़ा दिए जाएंगे, आपको भजन सिखा दिए जाएंगे, आपको एग्जैक्टली बता दिया जाएगा कि आपको क्या बोलना है, क्या करना है, और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, है ना. लेकिन ये सब आप बिना बिना साक्षात अपरोक्ष ज्ञान के भी कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा होता है. वो आपको डायरेक्ट नॉलेज, बट दे आर टोटली इनकेपेबल ऑफ इम्पार्टिंग डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द सेल्फ. फिर वो एक और चीज़ यहाँ पे कहती हैं, समाधि से भी आपकी इग्नोरेंस डिस्ट्रॉय नहीं होती. समाधि लग जाने के बाद भी आपको ज्ञान नहीं होता. समाधि से आपके लिए ज्ञान का रास्ता खुल जाता है लेकिन ज्ञान नहीं होता. अज्ञान सिर्फ जब तुम्हें सबसे बड़ा, मतलब वो अज्ञान का नाश होगा, उसको हम हाईएस्ट नॉलेज भी बोलते हैं, और हाईएस्ट नॉलेज भी क्या है? अज्ञान के नाश होने पर ही सिर्फ तुम्हें तब वो ज्ञान होगा अपने होने का, जो तुम हो आत्म.
अपरोक्ष ज्ञान और साक्षात अपरोक्ष ज्ञान में थोड़ा सा कंफ्यूजन.
हाँ ओके. देखो अपरोक्ष ज्ञान जो है, दैट इज कि आपको पता है कि माइंड जो है, मेरा माइंड है, यू आर अवेयर ऑफ योर माइंड, करेक्ट. इसको हम बोल रहे हैं क्योंकि ये कहाँ से पता पड़ रहा है? जो माइंड जो है ये भी सेल्फ के ही प्रकाश से, हम ये जान गए हैं कि जितना भी हम जानते हैं वो इवेंचुअली नॉलेज कहाँ से आ रही है, वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है, वो सेल्फ ही दे रहा है ना। तो अगर मैं ये भी जान पाती हूँ कि मेरा माइंड है, ये अपरोक्ष ज्ञान है, लेकिन ये किसके प्रकाश में हो रहा है, सेल्फ के प्रकाश में ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब सेल्फ सेल्फ को ही जानता है, मतलब किसी और थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर माइंड को जानने के लिए भी सेल्फ लग रहा है, दैट इज़ दिस इज जस्ट अ वेरी सटल डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर सेल्फ ही सेल्फ को जान रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान। उसको किसी और को लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी और इंद्री की, किसी और शरीर की, मन की, बुद्धि की, बाहर कुछ भी नहीं चाहिए, वो स्वयं ही स्वयं को जानता है, इसलिए वो साक्षात है। जो भी वो अनुभव होता है, द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट, आप 50% वहीं पे वो झूठा हो जाता है। अब देखो ना, कोई भी चीज़ आप ले लो, इसकी आत्मन की तो बात ही छोड़ दो, आप अगर एक सिर्फ एक आम के टेस्ट को बताने की कोशिश करो कि किसी को कि कैसा होता है, या आप आपका रूम है, आप अपना रूम अपना देख सकते हो आसपास कैसा है, लेकिन अगर आप हमें डिस्क्राइब करने की कोशिश करो वो लैंग्वेज में, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ योर रूम लुक्स लाइक इन द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड्स? इट इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं बताया जा सकता है ना। आप मेरा चेहरा देख रहे हो, लेकिन आपको अगर मेरा चेहरा किसी को डिस्क्राइब करना हो, कितनी भी अच्छी से अच्छी लैंग्वेज कुछ भी हो, नहीं कर पाओगे। तो ये तो हमारे बहुत, मतलब क्या बोलेंगे, टैंजिबल स्थूल अनुभव हैं, जिनको हम लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो तो मतलब एक चीज़ ही अलग हो गई है ना। फिर भी कोशिश की जा रही है उसको कुछ वर्ड्स देने, तो वैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है मेन जो मैंने बताया कि माइंड को जानने के लिए सेल्फ लग रहा है, लेकिन सेल्फ को जानने के लिए सेल्फ खुद से ही जान जाता है अपने आप। अब इन्होंने यहाँ पे थोड़ा ना, असल में वेदांत और योगा, जैसे पहले इन्होंने वेदांत और बुद्धिज्म में डिफ्रेंशिएट किया, अब यहाँ पे वेदांत और योगा का बता रही हैं वो। देखो, योगा जो भी होता है, इवन क्रिया योग की जैसे हम बात करते हैं, क्रिया योग में फाइनल क्या है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट, दैट इज़ समाधि, है ना। समाधि भी वही है कि जब आपको ये आपका शरीर मन बुद्धि का अनुभव समाप्त हो जाए, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे समाधि एक तरह से, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करने की उसको कोशिश करूँ। पर वो कह रही हैं उसके बाद भी आपके अज्ञान का नाश होना बहुत ज़रूरी है, वो अज्ञान के नाश से ही आप इवेंचुअली वो आत्मन हो पाओ। लेकिन इसका क्या क्या मतलब है कि समाधि की इम्पॉर्टेंस नहीं है या योगा या प्राणायाम की इम्पॉर्टेंस नहीं है? नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि वही आपको तैयार करेंगे उस चीज़ के लिए, उसके बिना तैयारी नहीं होती है। समाधि इज़ द गोल ऑफ योगा विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इवन इन समाधि इग्नोरेंस इज नॉट इरेडिकेटेड फ्रॉम द माइंड इंटेलेक्ट। फॉर इरेडिकेशन ऑफ इग्नोरेंस यू हैव टू टेक रिफ्यूज इन वेदांता। तो जो वेदांत है, जो हमारा ज्ञान का है, ये फाइनल यही आता है इवेंचुअली, समाधि के बाद भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती। फिर वो कह रही हैं लेकिन योगा भी आपको हमेशा मास्टर की गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए। तो अगर तुमको ये लगता है कि स्लेवरी है, अगर गुरु की बात मानना तुमको स्लेवरी लगती है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, फिर रहो अपने संसार में, है ना, एंजॉय करो, अच्छे से रह लो, क्या प्रॉब्लम है। दिस पाथ इज ओनली फॉर दोज हु सी इट एज नथिंग बट लव फॉर द मास्टर।